राजवंशी बंगले का ऊपरी हिस्सा रात की खामोशी में और गहरा डूबा हुआ था। लंबी लंबी झूमर की रोशनी भी उस खामोशी को तोड़ने में नाकाम थी। बंगले के पुराने लकड़ी के दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर के एक कमरे से धीमे धीमे बातचीत की आवाज़ें आ रही थीं। कमरे के भीतर सरोज राजवंशी अपनी ऊंची गद्देदार कुर्सी पर बैठी थी। उनका चेहरा कठोर था, आंखों में गहरी झुंझलाहट और अधरों पर खींच की लकीरें। उनके बगल में बैठी थी शालिनी, उनके करीबी, जो अक्सर उनकी साजिशों में साथ खड़ी नजर आती थी। शालिनी का चेहरा भी आग की तरह तप रहा था। वो एक अखबार को कसकर पकड़े थी, जिस पर साफ साफ छपी हुई थी हेडलाइन, रैना की किस्मत ने फिर छोड़ा साथ। शालिनी ने अखबार को जोर से मेज पर पटक दिया। बस यही बाकी रह गया था उस मनहूस लड़की की वजह से, सरोज ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में बोली। मैंने शुरू से कहा था कि ये लड़की हमारे लिए अशुभ है। देख लिया, अगर उसकी शादी हो जाती तो हम भी चैन की सांस लेते, लेकिन अब तो वो फिर यही हमारे गले की हड्डी बनकर अटक गई है, शालिनी ने झुंझलाकर कहा। आंटी, ये लड़की किसी शराब की तरह है, जितना दूर करने की कोशिश करो उतना ही और पीछे पड़ जाती है। अगर उस दिन मैं उसे खुद बाहर ना निकालती तो शायद आज ये बला हमारे सिर से उतर चुकी होती। सरोज ने अपनी तेज निगाहों से शालिनी की तरफ देखा। निकालना ही होगा उसे, चाहे जैसे भी। वो रहेगी तो हमारे अखिल की जिंदगी बर्बाद करती रहेगी। उसकी वजह से पहले ही कितनी बार अपमान झेलना पड़ा है, अब और नहीं सहा जाएगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर हाथ में ट्रे लिए भीतर आया। चांदी की ट्रे पर दो चीनी मिट्टी के कपों में चाय रखी थी। कमरे का तनाव उस समय और गहरा लग रहा था। नौकर ने आदरपूर्वक झुककर कहा, मालकिन जी, आपकी चाय। शालिनी ने तुनक कर कहा, अब रख भी दो, खड़ी खड़ी क्या देख रहा है, जा। नौकर ने चुपचाप ट्रे मेज पर रखी, दोनों के हाथ में कप थमाए और धीमे कदमों से बाहर चला गया। सरोज ने कप उठाया, एक घूंट लिया और जैसे कड़वाहट उनके होठों से उतरकर भीतर फैल गई। कितनी अजीब बात है, चाय जैसी मीठी चीज भी आज कड़वी लग रही है, शायद इसीलिए कि मन में आग लगी हुई है। शालिनी ने भी कप उठाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी गुस्से से भरी थीं। आंटी, हमें अब कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। ये लड़की बार बार हमें हरा देती है। हर बार सोचते हैं कि अब हमारा पीछा छोड़ेगी, लेकिन फिर किसी न किसी बहाने से लौट आती है। अब तो लगता है उसकी रगों में ही जहर है, जहां जाती है वहां बर्बादी लेकर जाती है। सरोज ने धीरे से कप मेज पर रखा और गंभीर स्वर में बोली, तुम सही कह रही है, एक बार मरकर क्या होगा। सच्ची सजा तो वही है जो रोज रोज चुभे, जो उसके दिल और आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दे, वही करनी होगी हमें। शालिनी उनकी तरफ झुकाई। लेकिन कैसे आंटी, अब तो उसका रिश्ता भी टूट चुका है, लोग पहले ही उसे बदनाम कह रहे हैं। अगर हम इस मौके को और गहरा करें तो शायद कभी उठ ही ना पाए। सरोज की आंखों में चमक आ गई। यही तो हमें करना है, उसकी टूटी हुई शादी को हमारी जीत बनाना है। उसे बार बार ये एहसास दिलाना है कि वो किसी के लायक नहीं, कि उसके नसीब में सिर्फ तिरस्कार लिखा है। जब तक वो पूरी तरह टूट नहीं जाती, हमें चैन नहीं मिलेगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों औरतों की आंखों में सिर्फ नफरत और साजिश की लपटें जल रही थीं। बाहर बंगले की लंबी गलियारों में हवाएं गूंज रही थीं, जैसे उन साजिशों की गवाही दे रही हों। शालिनी ने अचानक हंसते हुए कहा, आंटी, मुझे तो अब ये खेल और दिलचस्प लगने लगा है। सोचना, वो लड़की जो खुद को इतना खास समझती थी, वही अब एक तिरस्कृत औरत बनकर यहाँ वहाँ भटकती रहेगी, और हम हर दिन उसकी हार का मजा लेंगे। सरोज ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। हाँ, यही होगा। और देख लेना शालिनी, बहुत जल्द ये रहना खुद अपने कदमों से हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। बस हमें सही वार करना है। दोनों औरतें चुपचाप अपनी चाय की चुस्कियां लेती रहीं, लेकिन उनके दिलों में जो जहर घुर रहा था, वो किसी जहरीली चाय से कहीं अधिक खतरनाक था। कमरे की दीवारें जैसे इन साजिशों की साक्षी बन गई थीं। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था और राजवंशी बंगले के भीतर एक नई चाल, एक नई लड़ाई जन्म ले चुकी थी।